السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين يا رب العالمين. رمضان کا جب شروع ہوتا ہے تو لوگ بہت جوش و خروش کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے تو کچھ سستی آنے لگتی ہے، عمل میں کمی ہونے لگتی ہے، انسان تھکنے لگتا ہے. ایسے وقت میں بہت ضروری ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مہینہ ہمیں ملا ہے یہ بہت ہی بابرکت ہے، ایسا مہینہ کوئی اور نہیں. آپ کے سامنے میں ایک حدیث رکھنا چاہتی ہوں ترغیب و ترہیب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر دن اور ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ماہ رمضان کے ہر دن میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. ویسے تو روزے دار کی دعا ویسے ہی قبولیت کا شرف پاتی ہے، لیکن ایک ایسی گھڑی بھی روزے دار کو ملتی ہے جس میں اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو یہ مہینہ تو وہ ہمارے لیے بڑا خوشخبریوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے. کہیں رمضان کے روزے رکھنے پہ گناہوں کی بخشش کی خوشخبری ہے، کہیں رمضان کی راتوں میں قیام کرنے پہ پچھلے گناہوں کی بخشش کا اعلان ہے، کہیں یہ خوشخبری ملتی ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے، کہیں جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان میں، کہیں رمضان کی ہر رات اور ہر دن آزادی مل رہی ہے جہنم سے، کہیں فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، کہیں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں اور کہیں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں، کہیں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، درجے بلند ہو رہے ہیں. تو یہ مہینہ تو مبارک ہی مبارک ہے، اس کے دن بھی مبارک، اس کی راتیں بھی مبارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ضروری قبول کرتا ہے. کون کون ہے؟ ایک باپ، ایک روزے دار اور ایک مسافر. لہٰذا روزے میں خوب دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اور ہر مسلمان کو، چاہے وہ روزہ دار ہے یا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، بیمار ہے یا کوئی اور شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، تو اس کو بھی چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں تو خوب دوڑ لگائے اور اپنی نیکی میں ورائٹی رکھے. حقوق اللہ بھی بات ادا کیجیے اور حقوق العباد بھی، یعنی جہاں آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں یا تراویح کا اہتمام کرتے ہیں یا ذکر اور اذکار کرتے ہیں، یہ سب عبادات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کیجیے جو خدمت خلق کے ہیں، ان میں بھی پیچھے نہ رہیں. مثلاً کسی کو رائڈ چاہیے مسجد جانے کے لیے، کوئی بوڑھا ہے ان کو گروسری چاہیے، کسی کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے اس کو دوا چاہیے، کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کر دیں، کسی کا ہاتھ تنگ ہے تو اس کی مالی مدد کر دیجیے. اس طرح سے اپنی نیکیوں میں اضافہ بھی کریں اور اس کے اندر وسعت بھی لے کر آئیں کہ ہر ایک تک آپ کی نیکی پہنچے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں ایسے ہوتے تھے جیسے تیز ہوا ہر جگہ تک پہنچ جاتی ہے، یعنی ہر قسم کی نیکی کے کام کرنا، صدقہ و خیرات بھی کرنا اور بھی عبادات میں بھی تیزی دکھانا اور لوگوں کے بھی کام آنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں عبادات میں ہی آ جاتی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سے کچھ کیا نہیں جاتا، اور یا ان کو سستی آ جاتی ہے، یا وہ تھک جاتے ہیں، یا ان کا دل نہیں لگتا عبادت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تمہارا رمضان کا دن और गैर रमजान का दिन बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन वो इनको बराबर कर देते हैं, यानी ऐसे ही गुजारते हैं जैसे रमजान के अलावा के दिन गुजारते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा जो दिन भी रमजान में गुजरे वो डिफरेंट होना चाहिए गैर रमजान से, चाहे वो हमारी इबादत का मामला है, सोने जागने का मामला है, हमारे अखलाक का मामला है, चाहे वो दूसरों के साथ मामलात का मामला है, कोई भी मामले में वो नहीं होना चाहिए जैसे हम रमजान के अलावा दिनों में बेपरवाही से चलते हैं या टाइम को वेस्ट कर देते हैं। बल्कि हमारी बोल चाल, हमारी एक्टिविटी, हमारे हर तरह के मामले में फर्क होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि रमजान है, पता चलना चाहिए कि ये फर्क है बाकी दिनों से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस उसी तरह कैजुअली इसको लें, इसको आम कोई दिन समझें जैसे बाकी दिनों को समझते हैं, और इसको कोई अहमियत दिए बगैर लापरवाही से चलते रहें, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान को तौफीक ही नहीं होती, तौफीक नहीं होती नेकी करने की, नेकी में दौड़ने की, इस तौफीक से ही वो महरूम होता है। तो क्यों महरूम होता है? अल्लाह ताला तो किसी पे जुल्म नहीं करता, लेकिन असल में इंसान अपनी ही बाज़ ऐसे गुनाह होते हैं जिनकी वजह से नेकी करने से महरूम हो जाता है। तो हम देखते हैं कि क्या वो गुनाह हैं जिनकी वजह से इंसान नेकी की तौफीक खो देता है। हम अपने अंदर भी जांचे कि कहीं हमारे अंदर ऐसी चीजें तो नहीं है, कहीं यही गुनाह तो नहीं जो हमें पीछे रखे में, कि हमें सुस्ती आती है नेकी करने में, या दिल नहीं लगता नेकी में, या थोड़ा सा करते हैं तो फौरन ही फिर दिल हट जाता है। तो क्या वजूहात है इसकी? इब्नुल कय्यम ने अपनी किताब अल-फवाइद में बाज चीज़ों का जिक्र किया है जो तौफीक का दरवाज़ा बंद कर देती हैं, और ये कितनी बड़ी महरूमी है कि इंसान से तौफीक ही छिन जाए, वो कर ही ना पाए। तो इमाम इब्नुल कय्यम ने इसकी 6 वजूहात बयान की हैं, किसी में एक भी हो सकती है या दो भी हो सकती है या सारी भी हो सकती। तो हम चेक करते हैं अपने आप को कि हमारे अंदर तो ये नहीं है, ये क्यों जरूरी है? इसलिए कि अगर नेकी का काम बोझ लगने लग जाए ना, तो फिर नेकी करनी मुश्किल हो जाएगी, और नेकी के बगैर, अमले साले के बगैर कयामत में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। या अगर ये नेकियां कम पड़ गईं तब भी वहां पे मुश्किल पड़ेगी। अब आप ऐसे ही देख लेना, एक आदमी है, उसके सामने आप अल्लाह ताला की बात बताते हैं, उसका चेहरा खिल जो जाता है। दूसरा है, उसके सामने जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है, उसकी तबीयत बेजार होने लगती है कि ये क्या हर वक्त यही बातें शुरू कर देते हैं। वो चाहे मुंह से कुछ ना कहे मगर वो बेचैन होने लगता है। इसी तरह कोई लोग हैं, उनके सामने नमाज का जिक्र किया जाए, कोई दर्स हो, कोई लेक्चर हो, कोई अल्लाह के कलाम में से कोई बात पढ़ी जाए, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको बेजारी शुरू हो जाती है। तो ये क्या बात है? अंदर से तौफीक छिनना है, ये रीजन है इसका। अल्लाह ताला ने सूरह जुमर में भी फरमाया है ऐसे लोगों के बारे में कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनके सामने एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इश्माअज़्ज़त कुलूबुहुम, उनके दिल तंग होने लगते हैं, और जब दुनिया का जिक्र आता है तो बहुत खुश होते हैं। स्पोर्ट्स का जिक्र कर लिया या कोई कपड़ों का जिक्र किया, खवातीन के लिए कपड़े जेवर हैं, कोई फैशन है, मर्दों के लिए कोई सियासत की बातें हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर दो, इधर कर दो, ये बिजनेस बड़ा फायदेमंद है, या आजकल कौन सी स्पोर्ट्स, जो भी जिसका भी शौक है उसके बारे में बात की जाए, तो फिर चेहरे खिल जाते, खुश हो जाते। तो ये क्या बात है? यही वजूहात हैं जो अभी मैं आपके सामने बयान करने लगी हूँ, कि कुछ ना कुछ अपने अंदर ही खराबी होती है, तभी नेकी की बात, नेकी का काम बोझल लगने लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने पता नहीं गला दबा दिया हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मोमिन को तो नेकी के कामों के ऊपर खिल जाना चाहिए, खुश होना चाहिए, और नेकी की तौफीक मिलना उसको हर चीज से ज्यादा अजीज होना चाहिए। तो देखते हैं क्या वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह ये है कि नेमत के मिलने पर नेमत के शुक्र की बजाय नेमत के अंदर ही गर्क हो जाना। जैसे कि मसलन माल नेमत है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत दी है। मगर उसकी बजाय क्या हो कि इंसान माल के अंदर ही इतना मशगूल हो जाए कि उसको याद ही ना रहे कि शुक्र भी अदा करना है, कोई रब भी है जो मुझे देने वाला है। वो बस यही समझे कि जी मेरा अपना ही कमाल है। देखिए शुक्र क्या होता है, जैसे मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ कि शुक्र जुबान से भी अदा होता है, दिल से भी होता है, अमल से भी होता है। दिल से कैसे शुक्र होता है कि इंसान यही समझे कि अल्लाह की तरफ से मुझे मिला हुआ, मेरी अपनी कोई काबिलियत नहीं कि जी मैंने बड़ी अच्छी कमाई की, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने बड़ी मेहनत की इसलिए मुझे मिला है। नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से। जुबान से शुक्र क्या है? जुबान से शुक्र ये है कि अल्लाह ताला की तारीफ की जाए, उसका शुक्र बयान किया जाए, और अमल से शुक्र ये है कि उस चीज़ को, उस नेमत को मुनअम के यानी देने वाले के, नेमत के देने वाले के नाराजगी के काम में ना लगाया जाए बल्कि उसकी खुशनुदी के कामों में लगाया जाए। ये है पूरा का पूरा शुक्र। तो पूरा शुक्र तभी अदा होता है जब इंसान दिल से भी शुक्र करे, जुबान से भी शुक्र करे, अज़ा से भी शुक्र करे। यानी अब इस माल को अल्लाह की नाफरमानी में ना लगाए, अब इस माल से कोई ऐसे हराम काम ना करे जो अल्लाह ताला को नापसंद है, तो उसका यूजेज ऐसा करे, इस जगह पे उसको यूज करे जहां पे अल्लाह ताला की खुशी हो, नाराजगी ना हो। तब आप इससे हर नेमत के बारे में देख लें, आंखों की नेमत, कानों की नेमत, बोलने की नेमत, ये सारी नेमतें हैं ना जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई। ये जिस्म एक नेमत है, ये जिंदगी एक नेमत है, फिर औलाद एक नेमत है। ये सारी नेमतों का आप सोचें कि हम इनको किधर लगा रहे हैं। क्या दिल से शुक्र है, क्या जुबान से शुक्र है, क्या आज़ा से शुक्र है, या फिर हमें इन्हीं नेमतों ने गर्क कर दिया कि इन आंखों से सारा दिन हम यानी सोशल मीडिया पे बैठे में टिकटॉक देख रहे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पता नहीं क्या क्या बलाएं हैं उन सब के ऊपर तो आंखें इस्तेमाल हो रही हैं। एक अल्लाह के कलाम है या अल्लाह ताला की कायनात है, उनके लिए आंखें नहीं देखती कि इनसे सबक लें, इनसे इबरत लें, इनसे अल्लाह ताला को पहचाने। अल्लाह के कलाम के लिए आंखों को इस्तेमाल करें। इस तरह जुबान है, जुबान का शुक्र यही तो है कि हम इस जुबान से अल्लाह का जिक्र करें, इस जुबान को अल्लाह की फरमाबरदारी के अल्फाज बोलने के लिए इस्तेमाल करें, उसकी नाफरमानी में ना इस्तेमाल करें कि सारा वक्त जुबान चल रही है फजूल बातों पे, गीबत और चुगलियों पे, झूठ पे, लान तान पे, गालियां देने में, और इस जुबान को कभी अच्छे अल्फाज के साथ मुजैन नहीं किया, कभी अल्लाह ताला का जिक्र नहीं किया, उसका शुक्र नहीं किया, तो जुबान का शुक्र तो ना हुआ। और दिल में ये एहसास होना कि ये जुबान मुझे मेरे रब ने दी है, उसका बड़ा एहसान है। ये नहीं कि बस मैं पैदा हुई उसके साथ, हमारे सारे खानदान में सब बोलने वाले ही थे इसलिए मैं तो गूंगी हो ही नहीं सकती थी, नहीं। तो ये है शुक्र। तो शुक्र अदा किया जाए ना कि ये कि नेमत के अंदर ही इतने मशगूल हो जाएं कि नेमत पाके नेमत देने वाले को ही भूल जाएं। अगर इंसान ने ऐसा किया कि नेमत देने वाले को भूल गया ना और नेमत में गर्क हो गया, अल्लाह ताला नेकी की तौफीक छीन लेता है। फिर बहुत ज्यादा इल्म तो हासिल कर लेना लेकिन अमल ना करना। यानी इल्म तो बहुत है, क्लासें इधर ली जा रही हैं, उधर ली जा रही हैं, और पता नहीं किस किस कोर्सेज में अपने आप को रजिस्टर किया हुआ, लेकिन अमल के मामले में सिफर है, जीरो पे खड़े में, अमल करना ही नहीं। तो ये भी नेकी की तौफीक को छीन लेता है। इंसान बस पढ़ता तो जा रहा है, बहुत पढ़ रहा है, कुरान पे कुरान खत्म किए में, लेकिन अमल क्या है? अमल का दरवाजा बिल्कुल ही बंद रखा। इसी तरह तीसरी चीज, गुनाह में तो तेजी करना लेकिन तौबा में डिले करते जाना। देर करना, यानी गुनाह करने में तो बड़े दलेर हैं, लेकिन जब तौबा का मामला आता है तो फिर हजार बहाने हैं कि तब तौबा कर लूंगी, जब हज करूंगी तो उसके बाद तौबा कर लूंगी, और फिर अब मैं बेपर्दगी से तौबा तब करूंगी जब शादियां सारी अटेंड हो जाएं तो फिर मैं हिजाब लेना शुरू करूंगी। आदमी कहता है मैं हराम खाना तब छोड़ूंगा, हराम कमाना तब छोड़ूंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं एक ही दफा तौबा करूंगा, इनकी जिम्मेदारियों से जरा फारिग हो जाऊं। तो यानी तौबा में इतना डिले, जबकि पता है कि गुनाह कर रहे हैं, लेकिन बस तौबा को डिले किए जाना, बुढ़ापे में कर लेंगे जी, जब 60-70 साल के हो जाएंगे, अभी तो जवानी है, अभी क्या तौबा करनी। और फिर शैतान कहता है नहीं नहीं भाई, अभी तो तुमसे ये गुनाह दोबारा हो जाएगा, तो तौबा करने की क्या जरूरत है। तो लिहाजा तौबा में आगे से आगे इसको टालते रहना, ये भी इंसान के लिए दरवाजा बंद कर देता है नेकी का। जबकि इंसान को यह समझना चाहिए कि तौबा का दरवाजा हमेशा तो नहीं खुला रहना, जब नजा का आलम आता है तो ये तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, सिर्फ तब तक ये दरवाजा खुला, जब तक ये रूह जिस्म में, यूं ही जान हलक में आई दरवाजा बंद हो गया, और मौत का तो कोई पता नहीं। लिहाजा जिस जगह पे हैं, जिस उम्र में भी हैं, जिस वक्त में भी हैं, उसमें ही तौबा कर लें, ताखीर ना करें इसमें। तौबा करने के लिए जहां बैठे हैं वहीं तौबा कर लें, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी खास वक्त के इंतजार की जरूरत नहीं कि आधी रात होगी मैं तहज्जुद पढ़ूंगी तो तभी तौबा करूंगी, नहीं, अभी इसी वक्त कर लें। और फिर अगली चीज, चौथी चीज क्या है, नेक लोगों से ताल्लुक पे तो फखर करना, लेकिन उन जैसा बनने की कोशिश ना करना। यानी नेक लोगों से ताल्लुक का तो बड़ा फखर है कि जी फलां आलिम दीन है, वो मेरे दोस्त है, और फलां उनका भी नंबर मेरे पास है, और मैं अपनी फलां उस्ताजा से भी बहुत करीब हूं, मैं किस वक्त भी उनको कॉल कर लूं, कभी भी उनके घर चली जाऊं, मैं तो उनको 20 साल से जानती हूं। यानी जो नेक लोग हैं उनके साथ ताल्लुक के ऊपर तो बहुत खुश होना और बढ़ बढ़ के बातें करना, बड़ा फखर करना, लेकिन जो उनके अमल हैं उनको कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। तो ये भी फिर तौबा की तौफीक छिन जाती है कि नेकों का साथ भी मिला हो और फिर भी इंसान अपने अमल को ना बदले। फिर पांचवी चीज है दुनिया के पीछे भागना, जबकि दुनिया आगे आगे दौड़ रही है। देखें इस दुनिया में जितना हमें मिल जाना है ना, वो तो अल्लाह ताला ने इसकी जमानत ली हुई है कि तुम्हें मैंने रिस्क देना है, मैंने खाना खिलाना है, मैंने पिलाना है, इसका जिम्मा मेरा है। जो अल्लाह ताला ने जमानत ली हुई उसके पीछे हम कितना दौड़ रहे, और जिसकी जमानत नहीं है और वो है जन्नत, उसकी जमानत नहीं ली कि तुम्हें जरूरी मैं जन्नत में दाखिल करूंगा, लेकिन उसकी कोई परवाह ना करना। अब दुनिया आगे आगे दौड़ रही है और इंसान उसके पीछे दौड़ता चला जा रहा है। किसी ने आज तक कहा है कि मुझे, मैंने काफी दुनिया जमा कर ली, अब मुझे और की जरूरत नहीं है? किसी ने नहीं कहा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया इब्ने आदम के पास अगर दो वादियां सोने की हो तब भी उसको हिर्स रहती है कि तीसरी हो जाए, और उसका पेट तो कब्र की मिट्टी भर सकती है, यानी कब्र में जाएगा ही तो तब भी इसको चैन आएगा, तभी इसका पेट भरेगा, इसने दुनिया में हिर्स नहीं छोड़नी। तो हम भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, और ये नहीं सोचते कि ये दुनिया कोई भी नहीं ऐसा कि जो हासिल करके उसका पेट भर गया हो। इसने हमें इतना मशगूल कर दिया, इतना मशगूल कर दिया हमें इसी की दौड़ में दिन और रात लगे हुए, और इसकी फिकरात हमारे सर पे सवार है, जो दुनिया के पीछे दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, जबकि दुनिया दूर जा रही है। और आखिरी बात कि आखरत उसकी तरफ बढ़ रही है और वो आखरत से दूर भाग रहा है। पिछली बात क्या थी, दुनिया दूर भाग रही है और वो इसकी तरफ बढ़ रहा है, और छठी बात है ये आखरत करीब आ रही है और वो उससे दूर भाग रहा है। यानी आखरत का वक्त, कयामत का वक्त, या इंसान की मौत का वक्त करीबी तो आता जा रहा है, हर सांस के साथ हम किधर को जा रहे हैं, किस तरफ हमारी डायरेक्शन है, मौत की तरफ, हम अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन खैर ऐसी बातें तो किसी के सामने कर दी जाएं तो उनको बहुत बुरा लगता है कि आप मौत का जिक्र क्यों कर रहे हैं, आखिरत का जिक्र क्यों कर रहे हैं, आपको बस यही बातें करनी आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कसरत से लज्जतों को तोड़ने वाली का जिक्र करो, यानी मौत का। लेकिन ये जिक्र तो हमें पसंद नहीं। पहला मरहला तो मौत है ना, आखिरत का पहली आखिरत की सीढ़ी यही है, उसके बाद और सारी मंजिलें, कबर है, हशर है, पुल सिरात है, मीजान है, कितने सारे मरहले हैं, इंसान को परवाह ही ना हो, वो दूर भाग रहा है इससे। हिसाब किताब की बात की जाए तो उसकी तबीयत पे गरां गुजरता है। बाज लोग तो कह देते हैं कि नहीं हमारे सामने ये डरा देने वाली बातें ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये बात करो, ज्यादा कसरत से करो इसका जिक्र। और हम लोग क्या चाहते हैं, इन बातों का जिक्र ना किया जाए क्योंकि कहीं हमारा मजा खत्म ना हो जाए। आखरत का तो जिक्र बिल्कुल ही ना किया जाए क्योंकि उससे हम डर जाते हैं, बस दुनिया के ही जिक्र करते रहो, उससे खुश होते हैं। तो आखरत हमारी तरफ बढ़ रही है तेजी के साथ, देख लें दिन और रात कैसे तेजी से गुजर रहे हैं, महीने पे महीना, साल पे साल, हमें पता भी नहीं चलेगा और ये रमजान गुजर भी जाएगा। ये ना हो कि हम हाथ मलते रह जाएं और अभी हमने सोचा अभी तो बहुत दिन पड़े हैं और एंड में आके ये पता चलता है रमजान गुजर भी गया, पता भी नहीं चला। हर एक की जुबान पे यही बात होती है, इतनी तेजी से गुजर गया। तो इसी तेजी के साथ हमारी जिंदगी भी गुजर रही, देख लें साल पे साल कैसे आता जा रहा है, लेकिन हमें कोई फिक्र ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं कि भाई हम अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी कब फिक्र करेंगे, कौन सी वो उम्र आएगी जिसमें इसकी फिक्र हमें लग जाएगी कि हम आगे अब जाने वाले हैं और अब हमें कुछ करना है। ये ना हो कि ये फिक्र तब लगे जब कमर झुक जाए, आंखों पे चश्मे लग जाए, कानों से सुनाई ना देता हो, बाल सफेद हो जाए, हिम्मत खत्म हो जाए और तब इंसान कहे अब मुझे आखरत की फिक्र लग गई है। अब फिक्र लग गई है जिस वक्त कुछ करने के काबिल नहीं रहे, ना जमीन पे सजदा कर सकते हैं, ना रोजा रख सकते हैं, ना कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं, ना कोई किसी और की मदद कर सकते हैं, अपनी मदद नहीं कर सकते, किसी और की मदद क्या करनी। तो तब फिक्र लगना फिर इंसान को वो फायदा नहीं दे सकता। जैसे अभी जिस वक्त आप हिम्मत में हैं, आपके पास ताकत है, बस लोग जवानी के बिल्कुल शुरू में हैं, जो काम इस वक्त कर सकते हैं हिम्मत के दिनों में वो आखिरी उम्र में नहीं हो सकते। आपने देखा होगा लोग हज पे जाते हैं, उस वक्त बाज लोग व्हीलचेयर पे हज कर रहे होते हैं, यानी इतना डिले करते हैं, इतना डिले करते हैं हज को कि बस अब चल भी ना सके और व्हीलचेयर पे ही हज हो, और सारी जवानी अपनी पैसा होने के बावजूद इधर उधर गुजार देते हैं कि अभी हम बिजी बहुत हैं, एंड में जाएंगे हज करने, एक ही दफा जाएंगे, तभी गुनाह बख्शवाने हैं हमने। तो ऐसा ना करें, आखरत के मामलात को हरगिज डिले ना करें। और यही वक्त है ये सोचने का कि मैंने अपनी आखरत के लिए क्या बनाया है और मुझे कितनी और जरूरत है। तो इस वक्त को नेकियों में दौड़ लगाने में लगाएं, अगर तौफीक नहीं मिल रही तो इन कामों को देखें कि कहीं मैं इनमें से किसी में तो इन्वॉल्व नहीं हूं, और फिर अल्लाह ताला से तौफीक मांगें भी कि अल्लाह मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकती, या अल्लाह तूने ही मुझसे कराना है। पढ़ा करें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, यही आज का जिक्र है कि जब भी नेकी की तौफीक लगे कि छिन गई है, लगे कि नेकी करनी मुश्किल हो रही है, ये लगे कि नेकी बोझ बन रही है, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, अल्लाह मैं तो अपनी ताकत से कर ही नहीं सकती, मेरे अंदर कोई ताकत और कुव्वत नहीं, या अल्लाह तूने ही कराना। तो आज का ये जिक्र नोट कर लीजिए। और जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालों अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा जिक्र करो। तो जिक्र को ज़्यादा करना है, ये नहीं कि कभी कभी याद आ गया तो फिर कर लिया। इन दिनों में आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, उस वक्त तो हर वक्त कोई आप नफल तो नहीं पढ़ रहे, हर वक्त तो कुरान भी नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन जिक्र तो हर वक्त हो सकता है ना। जिक्र के लिए तो कोई कैद नहीं, जिक्र के लिए कोई वक्त नहीं है, जिक्र के लिए कोई जगह नहीं खास मखसूस कि आपको वहां बैठना है तो मस्जिद जाके ही जिक्र करना है, मुसल्ले पे बैठ के ही जिक्र करना है, नहीं, हर जगह पे करें। कोई ड्राइव कर रहा है तो उस वक्त करें, घर से बाहर जा रहे हैं तब करें, कोई खाना बना रहा है तब करें, खाना खा रहे हैं तब जिक्र कर सकते हैं। हमारे असलाफ में से एक के बारे में आता है कि वो जब मुंह में निवाला डालते थे तो हर निवाले के साथ फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी ने उनसे पूछा कि क्यों आप ऐसे कहते हैं, तो ये फरमाया कि मुंह में निवाला डाल के खामोश रहने से बेहतर है कि मैं उस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं। और वाकई हर निवाला और हर सांस इस काबिल है कि हम उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वही बात जो पहली आपको बयान की है कि नेमत में गर्क होके, खाना ऐसा मजे का है कि उस उंगलियां चाटते रह गए और खाने की तारीफें कर रहे हैं और खाने बनाने वाली की तारीफें हो रही हैं, लेकिन वो जो खाना देने वाला है और जिसके इज़न से हम खा रहे हैं और उसको इंजॉय कर रहे हैं और हमें जायका आ रहा है, लज्जत आ रही है, और जिसने ये सब हमें चीज़ें दी जिनसे ये खाना बना है, तो उस रब का शुक्र अदा करना ही भूल जाते। तो जिक्रे कसीर करना है, कलील नहीं करना, कसीर की तरफ हमें दावत दी गई है। और आज की दुआ वो दुआ है जो चॉइस नहीं है कि हम करें या नहीं करें, बल्कि इस दुआ को याद कर लें इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी दुआ है। और ये दुआ शिर्क से पनाह की दुआ है, इसलिए कि इंसान को बाज दफ़ा ऐसा लगता है कि मैं तो शिर्क कभी करती नहीं, लेकिन शिर्क उसके अंदर क्रीप इन कर जाता है, ऐसे कि बिल्कुल खामोशी के साथ, जैसे अंधेरी रात में काले पत्थर पे एक चींटी चल रही हो, इस तरह से शिर्क आ जाता है, जैसे वो चींटी नजर नहीं आती ना, ऐसे शिर्क अंदर जिंदगी में शामिल हो जाता है। और शिर्क वो गुनाह है, अल्लाह ताला माफ फरमाए इससे, कि इसके बाद अगर चाहे कोई नमाज पढ़े, रोजा रखे, कुरान पढ़े, खिदमत खल्क करे, सब जाया है अगर शिर्क कर लिया, इसलिए कि शिर्क वो जहर है जिसका एक कतरा भी अगर खाने में डाल दिया जाए सारा खाना बर्बाद हो जाए, इसी तरह शिर्क है। और शैतान सबसे ज्यादा इस कोशिश में रहता है कि इंसान किसी तरह शिर्क कर ले, इसलिए कि शिर्क कर लिया तो खुद ब खुद उसने जहन्नुम में अपना ठिकाना बना लिया, सारी नेकियां जाया हो गई, अब चाहे करता रहे जितनी मर्जी नेकियां, कोई परवाह नहीं है, खुश होता रहे नेकियां कर करके, कोई परवाह नहीं, इसलिए कोई नेकी भी कबूल नहीं। और अल्लाह ताला ने फरमाया मैं शिर्क को नहीं माफ करूंगा और जिस गुनाह को चाहे माफ कर दो। शिर्क से बचने की जरूरत है, इसलिए दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन उशरिक बिका शैअन व अना आलमु व अस्तग़फिरुक लिमा ला आलमु, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस चीज से कि मैं तेरे साथ किसी को भी शरीक ठहराऊं जिसका मुझे पता है, और मैं तुझसे माफी मांगता हूँ कि मैं किसी ऐसी चीज में पढ़ूं कि जिसको मैं नहीं जानता, ऐसा कोई शिर्क कर दूं जिसका मुझे पता ही नहीं, तो उससे भी माफी चाहता हूं कि अनजाने में या जाने में कभी कोई शिर्क की बात करती है। तो ये दुआ जरूर मांगा करें ताकि शिर्क से बचे रहें, और अल्लाह ताला हमें आखिरी सांस तक शिर्क से महफूज रखे हम सबको। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।